धवला पुस्तक तेरवी लेक्चर नंबर 7 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूं मुनिसुवयजिनवसहं सुवयमुनिवसह संतु अम्नमिहुं कम्माणुयोयमिणमो वोच्छमणे यत्थगंथगयम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है। इसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो पंचम खंड है पांचवा वर्गणा नामक, उसमें अभी हम कर्म अनुयोग द्वार देख रहे हैं और इस तेरहवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 67 पर आ गए। 67 यहाँ तप कर्म की बात अपनी चल रही है और उसमें भी ध्याता का वर्णन चल रहा है। कल से हमने वो ध्याता के जो लक्षण है क्या क्या है उसकी बात देखी थी हमने। देखो 64 पेज से शुरू हुआ था हम, 1, 2, 3, 4 उन्होंने जो नंबरिंग दिए है शॉर्ट में देख लेते हैं। देखो एक नंबर पर लिखा था जो उत्तम सहनन वाला निसर्ग से बलशाली, निसर्ग से शूर, 14 पूर्वों को धारण करने वाला या 9-10 पूर्वों को धारण करने वाला होता है वह ज्ञाता है, ये बात उसकी चर्चा की थी। फिर यहाँ 65 पेज पर 2 नंबर, वह ध्याता सम्यक दृष्टि होता है कारण के 9 पदार्थ विषय रुचि प्रतीति और श्रद्धा के बिना ध्यान की प्राप्ति संभव नहीं है। तीसरा पॉइंट, वो ध्याता समस्त बहिरंग और अंतरंग परिग्रह का त्यागी होता है, इन्हें मुनिराजों को ले लिया यहाँ पर। अब 4 नंबर 66 पेज पर, यानी कहाँ कौन से देश में स्थित होता है तो एकांत ऐसे प्रासुक, एकांत और प्रासुक ऐसे, फिर वो वर्णन किया पहाड़ है गुफा कंदरा वगैरह वगैरह ऐसे देश में स्थित होता है क्योंकि मन को विक्षेप करने वाले जो हेतुभूत पदार्थ दिखाई देने से शुभ ध्यान का विनाश का प्रसंग आता है। 5वां पॉइंट, वह सहज ध्यान साध्य आसन से बैठता है जिसको सुखासन कहा, यानी कोई अटपटा आसन करके तकलीफ हो जावे तो ऐसा नहीं है। 6 नंबर, वो ध्यान करने का कोई नियत काल नहीं होता कि किसी भी समय वो ध्यान के लिए ऐसा कोई ये नहीं कि इस समय नहीं करना, ऐसी कोई बात नहीं, ध्यान जब चाहे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ ये भी बताया गया था कि किसी भी देश में काल में यानी सब देश सब काल में सब अवस्थाओं में मुनि जो है केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और केवल ज्ञान तो ध्यान के द्वारा हुआ था, उसी से सिद्ध होता है ध्यान के कोई ऐसा निश्चित समय नहीं होता है। उसके लिए उन्होंने जो गाथाएं प्रस्तुत की थी तो हमने 19 गाथाओं तक पढ़ा था, यानी उसके लिए 15 नंबर की बात गाथा में बताया था कि सब देश और सब काल और सब अवस्थाओं में मुनियों को केवल ज्ञान होता है। 16 में बताया था कि मनोयोग वचन योग और काय योग की जहाँ एकाग्रता होती है और प्राणियों के घात से रहित होता है ऐसा जो देश है वो ध्यान करने के लिए उचित है। 17 नंबर की गाथा में ये बताया था कि जो स्थान ये पशु स्त्री नपुंसक आदि और कुशील जनों से रहित होता है निर्जन है वो विशेष रूप से वो स्थान उचित माना गया है। 18 नंबर की गाथा में ये देखा था कि जिन्होंने अपने योगों को स्थिर कर लिया है और जिसका मन ध्यान में निश्चल है ऐसे मुनियों के लिए वो भले वो एकांत में हो या मनुष्यों में व्याप्त है कोई जगह तो उसमें कोई अंतर नहीं होता। 19 में ये बात बताई थी कि काल भी वही योग्य है कि जिसमें उत्तम रीति से योग का समवधान प्राप्त होता है। वो समाधान का समवधान हमने किया था, गलत छपा था, यानी ध्यान करने वाले के दिन रात्रि बेला आदि कोई उसका कोई नियम नहीं होता। यहां तक तो हमने पढ़ा था, अब हम 20 नंबर का जो श्लोक है उसको पढ़ेंगे। ऊपर कुछ बोलेंगे आप? नहीं नहीं हाँ। तो देश काल चेठा नियमो झाण सनत्थि समयम् मे जोगान समाहानम् जह होई तहा पययवम्। कहते ध्यान के समय में देश काल और चेष्टा का भी कोई नियम नहीं है, यानी ऐसा ही आसन चाहिए यही करना, इसी कोई नियम नहीं है। तत्वतः जिस तरह योगों का वो समवधान करना, समाधान नहीं समवधान यानी एकाग्रता हो, उस तरह प्रवृत्ति करनी चाहिए। अब ये तो हमने ध्याता का कोई नियत काल नहीं होता है, ये 6 नंबर का पॉइंट देखा था, उसके लिए सब गाथाएं बताई थी। अब 7 नंबर का पॉइंट, वह ध्याता आलंबन सहित होता है। आलंबन के बिना ध्यान रूपी प्रासाद पर आरोहण करना संभव नहीं है, क्योंकि आलंबन भूत नसैनी, नसैनी सीढ़ी, आलंबन भूत नसैनी करते थे सीढ़ी सीढ़ी सीढ़ी, यानी आरोहण करना तो सीढ़ी चाहिए, और यहाँ तो अपने स्वरूप में आरोहण करना है, तो उनके आलंबन जो कोई श्रुत वगैरह है अभी बताएंगे। यहाँ पर जैसे किसी श्रुत का विचार चलता है ना, उसके आलंबन लेकर अपने स्वरूप में गुप्त हो जाते हैं, ऐसा। क्योंकि आलंबन भूत नसैनी आदि के बिना, यानी चढ़ना है तो कोई सीढ़ी वगैरह के द्वारा चढ़ा जाता है, पुरुषों का प्रासाद आदि पर आरोहण करना नहीं देखा जाता है। प्रासाद यानी बिल्डिंग, जो हम हमारी भाषा में घर, जो बड़े बड़े घर होते हैं, तो उसमें चढ़ना है तो उसमें सीढ़ी चाहिए। इस विषय में गाथा है, अभी इसके लिए ऊपर 21 नंबर की गाथा। आलंबनानि वायण पुच्छन परियठनानुपे हाओ सामायादियाम सौवम आवासयाइं च। देखते वो कौन कौन से आलंबन है, तो कहते वाचना पृच्छना, ये सब स्वाध्याय के अंग है ना। परिवर्तना, परिवर्तन हम जो याद करते हैं उसको परिवर्तना कहते हैं, बारंबार उस पर विचार भोगना। अनुप्रेक्षा और सामायिक आदि सब आवश्यक कार्य, ये सब ध्यान के आलंबन है, यानी इनके करते हुए इनको चढ़कर फिर उसके उसको छोड़कर स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। जिस प्रकार कोई पुरुष नसैनी आदि दृढ़ द्रव्य के आलंबन से विषम भूमि पर भी आरोहण करता है, उसी प्रकार ध्याता भी सूत्र आदि के आलंबन से उत्तम ध्यान को प्राप्त होता है। 8 नंबर, वह ध्याता भले प्रकार रत्नत्रय की भावना करने वाला होता है, भावना के बिना ध्यान की प्राप्ति नहीं होती, केवल क्योंकि केवल एक बार में ही बुद्धि में स्थिरता नहीं आती। इस विषय में गाथा है, यानी बारंबार उसका प्रयोग चलता है तो उसमें स्थिरता आ जाती है। 68 पेज पर इसके लिए जो गाथा 23 नंबर की है, बहुत अच्छा ये सब ध्यान के बारे में दिया है, ध्याता की बात, ध्यान धाता दे सिट्रा, यानी 64 ऑनवर्ड ये सब बातें चली है। पहले लिखा भी था मैंने यहाँ पर, स्टार लिख के दिए। हाँ 23 नंबर देखो। पूवकयभासो भावना हि झाणस्य जोगदमुद्वेदी तावोयणान दंशन चरितवेरग्गजनियाओ। जिसने पहले उत्तम प्रकार से अभ्यास किया है, पूर्वकय अभ्यासो, पूर्व में किया हुआ अभ्यास, वह पुरुष ही भावनाओं द्वारा ध्यान की योग्यता को प्राप्त होता है। और वे भावनाएं ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वैराग्य से उत्पन्न होती है। ये ध्यान इन श्रेणी आरोहण रूप ध्यान की बात है, उसके लिए जो कुछ कर्तव्य है भावना, तो ये एकदम हो गया और श्रेणी चढ़ गया ऐसा नहीं होता है, बारंबार उसका अभ्यास होगा वहां पर। इसलिए कहते भावना के द्वारा। 24 नंबर, नाणे निच्चभासो कुणई मणो वारणम विशुद्धिम च नान गुण मुनिय सारो तो झायई निश्चलमयो। जिसने ज्ञान का निरंतर अभ्यास किया है वह पुरुष ही मनोनिग्रह और विशुद्धि को प्राप्त होता है। क्योंकि जिसने ज्ञान गुण के बल से सारभूत वस्तु को जान लिया है वही निश्चल मति हो ध्यान करता है। बिना जाने ऐसे ही बस सुन लिया और कर लिया तो कहते नहीं हो सकता, वो स्थिर हो ही नहीं सकता। इन्हें ज्ञान की वहां कितनी दृढ़ता होनी चाहिए, जिसको हम कहते ना बेसिक, उसका कितना परफेक्ट होना चाहिए कि ज्ञान गुण के बल से सारभूत वस्तु को जान लिया है। और वो डामाडोल वाला ज्ञान नहीं है, आज किसने कह दिया तो यहाँ हुआ, कल किसी ने कहा तो वहां चलो, यहाँ भागो वहां भागो, वैसा नहीं है। तो कहते सारभूत वस्तु को जान लिया है वही निश्चल मति हो, निश्चल मति यानी उसकी बुद्धि जो एकदम निश्चल हो जाती है उसमें ध्यान करता है, स्थिर हो जाता है। 25 नंबर, संकाय सल्ल रहियो पसमत्थे आदि गुण गणो वैयो हो ये सम्मूढ़ मणो दंशन सुद्धि छाणम में। जो शंका आदि शल्यों से रहित है, वो शंका कांक्षा वगैरह जो है ना वो उससे रहित है, और जो मिथ्या माया और निदान वो शल्य है, यहाँ शंका आदि शल्य बताए, या संशय विपरीत वो भी ले सकते हम। जो शंका आदि शल्यों से रहित है और जो प्रशम तथा स्थैर्य आदि गुण गणों से उपचित है, उपचित है ना संचित है यानी उससे युक्त है, वही दर्शन विशुद्धि के बल से ध्यान में असम्मूढ़ मन वाला होता है। मूढ़ता नहीं है, असम्मूढ़। ध्यान के विषय में ये जो बहुत अच्छा दिया है, बारह का जो है ओपन, ध्यानम एकाग्र चिंतो ध्यानम, पता नहीं वो तो चारित्रासार बताया था ना उस दिन, इत्थ गाहा, ये कोई पूर्वा पर चली आई हुई गाथाएं होगी। बहुत बहुत ही अच्छा है, हो ना? अभी आगे बढ़ते हैं। ये 25 हमने पढ़ा ना, अभी 26 ऊपर, नवकम मानादानम पुराण विनिज्जरा सुहादानम चारित्र भावनाये चारित्र भावना के बल से जो ध्यान में लीन है उसके नूतन कर्मों का ग्रहण नहीं होता, पुराने कर्मों की निर्जरा होती है और शुभ कर्मों का आश्रय होता है। क्योंकि अभी वितरागता पूर्ण नहीं हुई है तो शुभ कर्मों का आश्रय चल रहा है, क्योंकि आश्रय बंध भी अभी बंध तो रुकते चला जाता है, विशिष्ट उसका संवर होते चला जाता है और पुराने जो बंधे हुए हैं पूर्व में बंधे हुए उनकी निर्जरा चलती है। 27 नंबर सुविध है ना, नूतन कर्मों का ग्रहण नहीं होता है, यानी ध्यान में लीन है और शुभ कर्मों का आश्रय होता है। अभी यथा योग्य वहाँ तो शुभ कर्म तो है ना, वहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना बंध विच्छित्ति होती है, पर वहाँ जो हाँ नूतन कर्मों का ग्रहण नहीं होता है, यानी जो पहले जैसे होता था वैसा नहीं होगा, यानी वो आश्रय कुछ रुक गया है संवर और फिर भी कुछ चल रहा है, यानी आश्रय भी है बंध भी है, हाँ संवर और निर्जरा भी है। तो संवर यानी कितने का बंध विच्छित्ति जो पहले हो चुकी है परंतु अभी थोड़ा हाँ हो गया, मुख्यतः तो अशुभ की और कुछ कर्म तो रहेगी ना, जैसे वो आठवें में भी इतने शुभ अशुभ रुकने पर भी वो यशस कीर्ति वगैरह जो हाँ इस तरह से लेना उसको होती है ना, बिना शुभ कर्म की निर्जरा नहीं होगी तो मोक्ष कैसे होगा, अरे काहे का भोगना अभी वो, अरे भोगना पड़ता है, अगर भोगना पड़ता है ऐसा अगर मानेंगे तो पुण्य तो हमेशा ही होता रहेगा, आखिर में बंदा वो भोगता रहेगा, अभी क्या कब जाएगा मोक्ष, समझ में आती है बात, उसकी भी निर्जरा उसका भी भले उदय चल रहा है परंतु अभी उसमें जिसको हम जो लौकिक सुख की तो बात ही नहीं, वहाँ पर मुनि दीक्षा ली हुई है और वहाँ कौन सा पुण्य जो चल रहा है, कोई तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है, जो कोई देवगति बांध रहा है, अभी देवगति बांध रहा है तो उसको भोगना पड़ेगा क्या, देवगति का हाँ नहीं भोग रहे, परंतु आपके जिस नये से आप पूछ रहे हैं उस नये से भी बात करेंगे, वहाँ तो आठवें गुणस्थान तक तो देवगति बन रही है तो देवगति भोगना पड़ेगा, देवायु बांधने वाले को जाना पड़ेगा, गति बन रही है, अन्य पुण्य प्रकृतियां बन रही है तो ऐसे निकल जाएगी, वहां जो उदय रूप जो चल रही है जो हमारी मनुष्य गति वगैरह उस रूप होकर उदय में आती रहेगी, उसका निर्जरा होती रहेगी।
और जो आपका कहना है कि कर्मों को भोगना ही पड़ता है वो बहुत स्थूल कथन है, डिटेल में सोचेंगे तो वैसा नियम नहीं बना सकते, ये बात अभी आपको समझाएंगे।
और निर्जरा ने उदय भी तो हो ही रहा है ना, निर्जरा का अर्थ क्या, अधिक मात्रा में प्रदेश गिर रहे हैं, उदय ही तो हो रहा है, उसको भोगना वाली जो बात ही नहीं है। कर्म को तो कोई भोग सकता नहीं, वो तो परद्रव्य है, आप कहेंगे उसके निमित्त से यहाँ जीव के जो मोहराग द्वेष होते हैं उसको तो भोग रहा है, उससे तो वेद ज्ञान कर लिया है तो वो अपने आनंद को भोग रहा है, कर्म अपने आप जो यथायोग्य खिर जाएंगे। ये हमारी जो मान्यता है ना कि ये मिथ्या मान्यता है, कौन सी, ये कर्म को भोगना पड़ता है, असाता को तो भोगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो कहते असाता उसका उदय, असाता कब कहेंगे, जब मोहनीय तीव्र है तो हम कहेंगे वो तो तीव्र उदय है, परंतु जो कोई अभी फल मिल रहा है शरीर में रोग उत्पन्न हुआ मान लेते हैं और वो मेरा है, मैं उस रूप हूँ, मैं रोगी हो गया हूँ और उसको देख देख कर मैं दुखी होता हूँ, ये किसकी भूल है, जीव की भूल है, तो उस समय भी उसका परिपूर्ण स्वभाव में कुछ खामी आ गई है क्या, आत्मा में कोई रोग हो गया है, कुछ नहीं है, तो उस समय भी वो समय दर्शन प्राप्त करके सच्चा सुख का अनुभव कर सकता है, ये उसके हाथ की बात है, ये कल्पना कर करके वो तो मान लेता है कि मैं भोग रहा हूँ, क्या करे अभी असाता है, ऐसा कैसा पाप होगा, कैसा उदय है, है ना, हाँ पर वो मेरे ज्ञान का गेय है, अभी उसमें वो असाता भी नहीं लगता है, नहीं जो असाता 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 अंतराय वगैरह उसका जो भूत सवार है ना, ये तो हमने उस पर ये हम कहते क्योंकि संयोग अच्छे तो हम सुखी ऐसा मान के रखा है हमने, तो कि संयोग उसी को कहते कि जो जुदे है पदार्थ तभी तो संयोग कहेंगे, एक ही जीव एक ही उसकी पर्याय होगी उसको संयोग कौन कहेगा।
हम पेज नंबर 68 पर आए हैं,
पेज 68 पर, यहाँ हम अभी 26 पढ़ा हमने, 27 को पढ़ना है। हाँ, 27 गाथा। सुविधि अजयस हाओ निसंगो निभयो निरासोय वैरग्य भावी अमणो जानम मिसुणि चलो होई। जिसने जगत के स्वभाव को जान लिया है, जो निसंग है, निर्भय है, सब प्रकार की आशाओं से रहित है, आशा कहो, इच्छाएं कहो, और वैराग्य की भावना से जिसका मन ओतप्रोत है, वही ध्यान में निश्चल होता है। जगत के स्वभाव को जान लिया है ने जगत में जो कुछ, जिसको हम कहेंगे संसार, वो क्या है, पुण्य पाप करते और उसके फल भोगते, और क्या है इस दुनिया में, जगत का स्वरूप जान लिया ने वस्तु स्वरूप को जान लिया, जगत के स्वभाव को जान लिया है। निस्संग यानी निष्परिग्रही है, निर्भय है, और सब प्रकार के आशाओं से रहित है। हमें क्या आशा है, अरे हमारी हमारे बच्चे बड़े हो जाए, अच्छे नौकरी लग जाए, अच्छे ठिकाने शादी हो जाए, पैसा आ जाए, ऐसा हो जावे, घर मिल जाए, है ना। कभी कभी पैसा होता है फिर भी ये नहीं मिलता है, ऐसा नहीं कि पैसे के लिए अटक गया है। तो कहते ये सब क्या है, आशा पड़ी है। क्यों आशा होती है, क्योंकि परसे सुख होता है, ये मान्यता उसके पीछे। तो वही ध्यान में निश्चल होता है। अभी पर पदार्थ से कुछ आने वाला ही नहीं, और सारा जो कुछ सुख का सागर, कल नियम सार में कितनी बातें आई, तो स्वभाव की ऐसी महत्ता ऐसी है, तो वो सुनते सुनते भी कितना अंदर से गदगद हो जाता है। तो ऐसा अनंत ज्ञान, अनंत स्वरूप, मैं स्वयं हूं, और फिर भी पर्याय में ऐसे कल्पनाएं करके दुखी हो रहे हैं ना। तो कहते कि अगर उस संबंधी सच्ची, अगर उसको ज्ञान हो जाए, बारंबार उसका अभ्यास करे, तो ही ध्यान में निश्चल हो सकता है। अभी ये तो बिल्कुल श्रेणी के ध्यान की बात है, परंतु सामान्य से भी अगर गृहस्थ के लिए भी ध्यान की बात है, वो सभी लागू हो जाए उसके लिए। अभी 9 नंबर ध्याता का लक्षण, वह ध्याता विषयों से दृष्टि को हटाकर ध्येय में चित्त को लगाने वाला होता है। ध्येय क्या है, ये स्वभाव भाव, अपना परिपूर्ण सामर्थ्य, वो ध्येय है। ध्येय ने गोल, वो ध्येय नहीं, वो तो साध्य है, साध्य हमारा मोक्ष है, पर ध्येय हमारा जो स्वभाव भाव है। तो विषयों से दृष्टि को हटाकर, ध्येय में चित्त को लगाने वाला होता है, क्योंकि जिसकी दृष्टि विषयों में फैलती है, उसके स्थिरता नहीं बन सकती। वो सकता हुआ शक्ति, क्या कहा, विषयों में दृष्टि यानी इंद्रियों के विषयों में से सुख है, ऐसे कोई बुद्धि पड़ी है और उसी में उसकी अधिकता लगती है, तो वो अपने आत्मा में स्थिर कैसे होगा। उसके लिए गाथा 28 नंबर, किंचित दिट्ठि मुपावत तयित्तु जेये निरुद्ध दिट्ठियो अप्पानम् मिसदिम् संदित्तुम् संसारमोक्खट्ठम्। किंचित दिट्ठि मुपावत इत्तु, जिसकी दृष्टि ध्येय में रुकी हुई है, वह बाह्य विषय से अपनी दृष्टि को कुछ क्षण के लिए हटाकर संसार में से मुक्त होने के लिए अपनी स्मृति को अपने आत्मा में लगावे। अपनी स्मृति कहो, अपना ज्ञान कहो, एक ही बात है। हाँ, जिसका ध्यान किसका करना है, स्वभाव का, अपनी परिपूर्ण सामर्थ्य का, उसको ध्येय कहा, त्रिकाली ध्रुव। और हम साध्य क्या है, तो मोक्ष अवस्था जो है वो साध्य है, साध्य ने वो पर्याय की बात साध्य है, पर ध्येय किसको कहना, जो ऑलरेडी है, जिसका हमको ध्यान करना है, उसको ध्येय कहते हैं। ध्याता जो ध्यान करने वाला, जैसे ज्ञान और ज्ञाता कहते ना, वैसे ध्यान और ध्याता। ज्ञान का क्या कहते विषय, ध्येय, वैसे ध्यान का विषय है वो ध्येय। अब यहाँ आते हैं 29 नंबर का गाथा 69 पेज पर, पच्चाहरित विषये हि इंद्रियाय मणंचते हिंतो अप्पानमिमणंतम जोगम पणिधाय धारे दी। इंद्रियों को विषयों से हटाकर और मन को भी विषयों से दूर कर, पच्चाहरित विषये ही इंद्रियायम और मनमच उनसे हटाकर समाधि पूर्वक उस मन को अपने आत्मा में लगावे। अप्पानम्मि मनम तम जोगम पणिधाय धारे दी। इस प्रकार ध्यान करने वाले का लक्षण कहा, अब ध्येय का कथन करते। देखो 64 से लेकर 69 तक ध्याता के लक्षण बहुत अच्छे प्रकार से बताए। अब यहाँ ध्यान पूछ रहे हैं, ध्येय का कथन करेंगे। अभी शंका, ध्यान करने योग्य कौन है? समाधान, जो वितराग है केवल ज्ञान के द्वारा, जिसने त्रिकाल गोचर अनंत पर्यायों से उपचित छह द्रव्यों को जान लिया है। त्रिकाल गोचर अनंत पर्यायों से युक्त ऐसा जो छह द्रव्य है, यानी छह द्रव्य कैसे जाने हैं? अनादि अनंत पर्यायों के साथ। नव केवल लब्धि आदि अनंत गुणों के साथ, क्या कहा? ये नव केवल लब्धि समझते हैं कौन से है? हाँ, जो क्षाई, जिसको नव क्षाई की लब्धि भी कहते हैं, उसको नव केवल लब्धि भी कहते हैं। हाँ आप बताएंगे। चारित्र, शायिक चारित्र, भोग उपभोग और वीर्य। देखो चार घाती कर्म नष्ट हुए हैं, तो उनके क्षय से जो ज्ञानावरण के क्षय से क्षायिक ज्ञान हुआ, दर्शनावरण के क्षय से क्षायिक दर्शन हुआ है, और मोहनी में दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी है, तो क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र ये तो हो गए। अंतराय पांच है, उनके क्षय से क्षायिक दान लाभ भोग उपभोग वीर्य। इस तरह से ये नव क्षायिक लब्धि कहते, उसी को नव केवल लब्धि कहा। आदि, ये तो क्षायिक के रूप में उसकी प्रस्तुति की। आदि अनंत गुणों के साथ जो आरंभ हुए दिव्य देह को धारण करता है, जो अजर है अमर है अयोनि संभव है, यानी अभी वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेने वाले, अदग्ध है अच्छेद्य है अव्यक्त है निरंजन है निरामय है, हाँ निरामय निरोगी, अनवद्य है, वो सावद्य के विरुद्ध अनवद्य है, समस्त क्लेशों से रहित है, तोष गुण से रहित होकर भी सेवक जनों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। न रोष है न तोष है, जिसको हम कहते ना हर्ष विषाद जो है, ऐसा तो है ही नहीं उनके। पहले तो कहे तोष से रहित होकर भी सेवक, सेवक है ना, जो उनके भक्त स्वयं है वो अपने भक्ति का फल पुण्य का फल पाते हैं। रोष से रहित होकर भी आत्म धर्म से परांगमुख हुए जीवों के लिए यम के समान है, क्योंकि जो आत्मा से परांगमुख है वो स्वयं उसका फल पाते हैं, वो कुछ नहीं देते करते। जिसने साध्य की सिद्धि कर ली है, साध्य क्या है? अवस्था, मोक्ष अवस्था, परिपूर्ण दशा। जो जितजेय है, संसार सागर से उत्तीर्ण है, जिसके हाथ पैर सुखामृत सागर में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, नित्य है, निरायुध होने से, आयुध ने शस्त्र, जिसने उसका कोई प्रतिपक्षी नहीं है इस बात को जताया है। क्योंकि आयुध कौन धारण करेगा? वो शत्रु का या प्रतिपक्ष का संहार करने के लिए। समस्त लक्षणों से परिपूर्ण है, अतएव दर्पण में संक्रांत हुई मनुष्य की छाया के समान होकर भी समस्त मनुष्यों के प्रभाव से परे है, अव्यक्त है, अक्षय है। अव्यक्त ऊपर भी आया था। ये सिद्धों का वर्णन है मेरे ख्याल से, है ना? सिद्धों का ध्यान करने योग्य कौन है? तो ये सिद्ध भगवान। अब 30 नंबर की गाथा। द्रव्यतः क्षेत्रसश्चैव कालतो भावतस्तथा सिद्धाष्टगुण संयुक्ता गुणा द्वादशधा स्मृता। वो सिद्धाष्ट के बाद गुण चाहिए, वो गुण हुआ है हमारी पुरानी पुस्तक में, उसका अर्थ देखते देखो। सिद्धों के 8 गुण होते हैं, अष्टगुण संयुक्ता है ना। उनमें द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा 4 गुण मिलाने पर 12 गुण माने गए हैं, वो बताएंगे भी। इस प्रकार जो 12 गुणों से विभूषित है, विभूषित है ने शोभित है, इस विषय में गाथा। सिद्धों का ध्यान करने योग्य कौन है? तो सिद्धों को लिया, क्योंकि वही सिद्ध जो परिपूर्ण शुद्ध अवस्था है, इस स्वभाव भी ऐसा ही है, इसलिए उसको सिद्धों को लिया यहाँ पर। देखो ये सिद्धों के विषय में जो गुण है उसकी बात यहाँ बताते हैं। अकसायम अवदत्तम अकारयत्तम विदेहदाचेव अचलत्तम अलेपत्तम चहोंति अच्छन्ति आहिंसे। ये रेगुलर गाथा होनी चाहिए। अकसायम अवदत्तम अकारयत्तम विदेहदाचेव अचलत्तम अलेपत्तम चहोंति अच्छन्ति आहिंसे। देखो अकषायत्व, अवेदत्व, अकारकत्व, देह राहित यानी देह से रहितपना, विदेहदा है ना, अचलत्व एक जगह स्थिर है, चलायमान नहीं होते, अलेपत्व यानी कर्म से भी रहित है, ये सिद्धों के अत्यंतिक गुण होते हैं। जिन जीवों ने हाँ उसी में हो सकते हैं, उसी का होगा ये सब। आपके पास है ना? अच्छा अच्छा देखो अभी हम आगे पढ़ते हैं। वेद से रहित, निर्वेद अलग बात है, अपगत वेदी जैसे कहते हैं ना वो अगवेद। जिन अभी कोई अकारक है ना अभी कुछ, हाँ जैसे अभोक्तृत्व कर्तृत्व लेते हैं उसी अपेक्षा में लेना है। जिन जीवों ने अपने स्वरूप में चित्त लगाया है, उनके समस्त पापों का नाश करने वाला ऐसा जिन देव ध्यान करने योग्य है, अथवा जिन द्वारा उपदिष्ट 9 पदार्थ ध्यान करने योग्य है। यानी जो अपने स्वरूप में चित्त लगाया है उनको किसका ध्यान करना है? तो कहते जिन देव का, क्योंकि जो सिद्धों का स्वरूप है वही मेरा है, या ये 9 पदार्थ ध्यान करने योग्य है। शंका, जबकि 9 पदार्थ निर्गुण होते हैं अर्थात अतिशय रहित होते हैं, ऐसी हालत में वे कर्म क्षय के कर्ता कैसे हो सकते हैं? क्या कहना चाहते हैं? ये सिद्धों का तो आप इतना वर्णन कर रहे हो, उनका ध्यान करना तो ठीक है क्योंकि वो अतिशय से सहित है, पर 9 पदार्थों की बात बता रहे हैं आप, या जीव पदार्थ है, आश्रय बंध वगैरह है, तो उनका ध्यान कैसे होगा? तो वो तो अतिशय से रहित है, उनके कारण उनका ध्यान करने से कर्म का क्षय कैसे हो सकता है? ये बहुत महत्व का प्रश्न है। देखो तो उसका समाधान नहीं, क्योंकि वे रागादि के निरोध करने में निमित्त कारण है, इसलिए उन्हें कर्मक्षय का निमित्त मानने में कोई विरोध नहीं आता। क्या कहना चाहते हैं? वो जो आता है ना ध्यान, क्षपक वाले का ध्यान कैसे होता है, उसमें द्रव्य से द्रव्यांतर वगैरह जो अर्थ अर्थांतर, हाँ, तो किसी भी ये नौ पदार्थों में से कोई भी उसका ध्यान का ध्येय हो सकता है, वहां पर उस पर ध्यान करते हैं वो, क्योंकि वो राग रहित होकर ध्यान करते हैं ना, हाँ, इसलिए उसको कर्मक्षय का कारण माना है। देखो यहाँ पर बढ़ते, इसके लिए वो 32 नंबर की गाथा बता रहे। आलम्बने ही भरियो लोगो छाई दुमनस खवगस जम जम मनसा पेच्छई तम तम आलम्बनम होई। यह लोक ध्यान के आलम्बनों से भरा हुआ है। ध्यान बस एकाग्र चिंता करना, एकाग्र चित्त करना है और राग रहित होकर करना है, ये उसका मूल बात है, है? तो कहते यह लोग ध्यान के आलम्बनों से भरा हुआ है। ध्यान में मन लगाने वाला क्षपक मन से जिस जिस वस्तु को देखता है वह वह वस्तु ध्यान का आलम्बन होती है। किसके लिए कहा? वो क्षपक को लिया, जहाँ वो इतने राग रहित होकर जान रहे उनके लिए। आप कहेंगे अच्छा है, फिर कल हम भी ध्यान से हम भोजन में ध्यान लगा कर खाते जाएंगे, ध्यान से टीवी देखते जाएंगे, अरे वहाँ तो राग द्वेष होकर चल रहे हैं। अरे अभी राग से रहितपना भी नहीं हो रहा है, यानी राग से जुदाई की भी बात नहीं सोची है, और बस उसको समझता नहीं मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ और पूरा दुनिया को जानने में रस पड़ा है, है? हाँ, तो कहते एक शपक के ध्यान की बात है। 12 अनुप्रेक्षाएं, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी पर आरोहण विधि, हाँ, 23 वर्गणाएं, 5 परिवर्तन, स्थिति, अनुभाग, प्रकृति और प्रदेश आदि, ये सब ध्यान करने योग्य अर्थात ध्येय होते हैं, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। इस प्रकार ध्येय का कथन समाप्त हुआ। वो किस किस का ध्यान? तो पहले सिद्ध परमेश्वर का बताया, फिर नौ पदार्थों का बताया, है ना? वो ध्याता वगैरह की सब विस्तार से कथन कर दिया। अब कहते ध्यान दो प्रकार का है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उनमें से धर्म ध्यान ध्येय के भेद से 4 प्रकार का है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। देखो यहाँ ना ध्यान यानी किसी एक पदार्थ संबंधी वो वहाँ उसका ध्यान का ध्येय है, परंतु उसमें ये कौन सा जीव लिया जिसके ध्यान होता है वो तो सम्यक दृष्टि, ध्याता कैसा होता है तो पहले सम्यक दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि को ये ध्यान कहा नहीं है, सम्यक दृष्टि के कहा है, यानी ये धर्म ध्यान की बात चल रही है, आंशिक वाले की बात अब चल रही है, ये जो धर्म ध्यान है। पर मिथ्या दृष्टि को ध्यान इसलिए नहीं कहा है, हाँ, क्योंकि अभी तो उसको सम्यक तो भी नहीं हुआ है, अभ्यास ऐसा ही होगा उसका। अभी जो हम पढ़ रहे हैं नियम सारे समय सार वगैरह, उसमें यही बात सब खोल कर बताई, तो उसमें वो ज्ञान की जो विशिष्ट जो है ना, जिसको कहेंगे तत्व निर्णय, ज्ञान की इतनी दृढ़ता हो जावे तो उसी का अभ्यास भी होगा और उसी की स्थिरता भी होगी। अब यहाँ धर्म ध्यान की बात बता रहे। देखो धर्म और शुक्ल ध्यान दो ध्यान है, उनमें से धर्म ध्यान ध्येय के भेद से 4 प्रकार का है। एक है आज्ञा विचय, दूसरा है अपाय विचय, तीसरा विपाक विचय और चौथा संस्थान विचय। यहाँ पर आज्ञा किसको समझना? देखो आज्ञा से आगम, सिद्धांत और जिनवचन लिए गए हैं, क्योंकि ये एकार्थवाची शब्द हैं। आज्ञा का अर्थ क्या है? आगम या जो सिद्धांत जो हमारे है, ये हमारे पास जो उपलब्ध है, जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, जिनवचन के अनुसार हमारे शास्त्रों की रचना की है, उसको आज्ञा कहते हैं। आज्ञा हमने वो हम इसके साथ शादी करे कि नहीं, हमको जाना है गांव में अमेरिका में जाए कि नहीं, वो वाली आज्ञा नहीं होती, उसको गुरु की आज्ञा नहीं कहते। इस विषय में गाथाएं हैं ऊपर 33 और 34 दो पढ़ेंगे। सुनि उण मणायिणी हणम भूदहिदम भूद भावण मणघम अमिदमजिदम महत्थम महानुभावं महाविषयं जाये जो निरवच्चं जिनानमानं जगप्पैवाणम् अनिऊणजनदुन्नेयं नयभंगपमानगमगहनम्। जो सुनिपुण है, सुनिऊण अनादि निधन है, अनायिणिहणम् जगत के जीवों का हित करने वाली है, भूदहिदम् जगत के जीवों द्वारा सेवित है, भूद भावनम् अमूल्य है, अमित है, अजित है, अनघम अमिदम अजिदम महत्तम महान अर्थ वाली है, महानुभाव है, महानुभाव महाविषय महान विषय वाली है। ये किसका वर्णन चल रहा है? जिनेन्द्र भगवान की वाणी का आज्ञा जिसको कहेंगे। निरवध्य है, अनिपुण जनों के लिए दुर्गेय है, यानी अनिपुण जनों के लिए वो जानने में कठिन है, और नए भंगों तथा प्रमाणागम से गहन है। ऐसी जग के प्रदीप स्वरूप जिन्हें भगवान की आज्ञा का ध्यान करना चाहिए। आज्ञा का ध्यान यानी उनके जिन वचनों का ध्यान, उसको कहते हैं आज्ञा का ध्यान। जो आज्ञा सम्यक तो भी होता है ना, तो यही है कि जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अनुसार हम समझे। तो ये सब किसका वर्णन है? जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का। वो आज्ञा कैसी होती वो सब यहाँ बताया गया। यह आज्ञा है, इस आज्ञा के बल से, आज्ञा के बल से, ये जिनेन्द्र भगवान आगम के बल से, आगम के ज्ञान के बल से, ये उपदेश के बल से प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणागम के विषयभूत पदार्थों का जो ध्यान किया जाता है वह आज्ञा विचय नाम का ध्यान है। क्या कहना चाहते हैं? ये भगवान की वाणी जो है, उनके द्वारा उपदेशित जो हमारे पास जो आगम है, उसी को यहाँ आज्ञा कहा। आज्ञा का अर्थ क्या कहा? आगम है ना, जिन वचन। तो जिन वचन के बल से हम ये जो पदार्थों को जानते हैं, वो प्रत्यक्ष ज्ञानी केवल ज्ञानी ने जाने हुए पदार्थ हम आगम के द्वारा जानते हैं, और प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाण आगम के विषयभूत, इसको प्रमाण कहते हैं। तो इसके विषयभूत जो पदार्थ है, आगम के अनुसार जो पदार्थ बताए गए हैं, उनका जो ध्यान किया जाता है वह आज्ञा विचय नाम का ध्यान, उसके विषय में गाथाएं 35 और 36। तत्थमय दुर्बलेण तविज्जायिरिय विरहदो मावी नेय गहणतणेण नानावरणादियेण च हे दूदाहरणा संभवेय सरिसुष्टुच्छान बुच्छेचो सौवर्णमयमवित्तत्थम तहा विहं चिन्तये मदिमम्। इसका अर्थ देखते हैं 35 और 36 एक साथ। मति की दुर्बलता होने से, मयि दुर्बलेनय, अध्यात्म विद्या के जानकार आचार्यों का विरह होने से, तब विज्जारीय विरह दो गेय की गहनता होने से, हाँ वो तो गेय कठिन है जानने में, ज्ञान को आवरण करने वाले कर्म की तीव्रता होने से, यानी ज्ञान का उघाड़ अल्प है, और हेतु तथा उदाहरण संभव न होने से, ये जो कोई सिद्ध साध्य सिद्ध करते हैं वो हेतु उदाहरण वगैरह वो सब न्याय की भाषा है। तो कहते हैं वो संभव न होने से नदी और सुखोद्यान आदि चिंतन करने योग्य स्थान में मतिमान ध्याता सर्वज्ञ प्रतिपादित मत सत्य है ऐसा चिंतन करें। देखो क्या कहना चाहते हैं, ये जो सारे विषय है वो नए के द्वारा प्रमाण के द्वारा अच्छी तरह परीक्षा करके निर्णय करने योग्य है, परंतु जो अल्प बुद्धि वाला है जिसकी बुद्धिमति ज्यादा नहीं है परंतु सरल मति है तो वो कैसा चिंतन करता है कि सर्वज्ञ ने बताई हुई जो सभी है वो सत्य है, इतनी दृढ़ता है उसके बारे में कि बस सर्वज्ञ प्रतीत है प्रणीत है और ये सब सत्य है, तो उसी का वो ऐसा वो चिंतन करता है। तो कहते 37 जिसको कहेंगे उसको भी वो आज्ञा सम्यक को कहते हैं। हमने देखा भगवान की आज्ञा सच्ची है ऐसा मानकर उसका ध्यान करता है तो उसके अल्प बुद्धि होते हुए भी उसको सम्यक्त्व का अधिकारी है। अब 37 नंबर अनुवगय पराणु कह परायणाजम जिना जय परा जियराय दोसमोहा न अन्नहावा इनो तेन यथा जग में श्रेष्ठ जिन भगवान जो उनको नहीं प्राप्त हुए ऐसे अन्य जीवों का भी अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं और उन्होंने राग द्वेष और मोह पर विजय प्राप्त कर ली है इसलिए वे अन्यथावादी नहीं हो सकते। क्या कहा, जिनेंद्र भगवान का वचन सत्य क्यों है ये बात बता रहे, अन्यथावादी ने विपरीत बताने वाले नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते कि जो उनको नहीं प्राप्त हुए इसे अन्य जीवों का भी अनुग्रह करने, अनुग्रह नहीं इसको उपकार करने में तत्पर, यानी वो कैसे कि जो उनको मानने वालों का ही उपकार होता है कि नहीं मानने वालों का भी, कहते वो तो वितरागी है पूर्ण वितरागी है और राग द्वेष और मोह पर विजय प्राप्त कर ली है इसलिए वो अन्यथावादी ने वो झूठ नहीं बोल सकते ये बात बता रहे। 38 नंबर पंचत्थिकाय छज्जी वकाये काल दौव मन्नेय आणागेज्जे भावे आणा विचयेण विचिनादि। 5 अस्थिकाय छह जीव निकाय, समझते हैं छह जीव निकाय कौन है, षट का एक जीव जिसको हम कहेंगे, 5 स्थावर और त्रस्काय काल द्रव्य तथा इसी प्रकार आज्ञाग्राह्य अन्य जितने पदार्थ है। अभी हमारा यही विषय पंचास्तिकाय में भी हुआ है, अब द्रव्य संग्रह में भी वही बात है ना, अभी अभी हमने वो 6 द्रव्य 9 पदार्थ की बात अभी हम देख ली है। तो कहते जितने पदार्थ है उनका यह आज्ञा विषय ध्यान के द्वारा चिंतन करता है, यानी उसी के स्वरूप के बारे में वो बारंबार उसका चिंतन चलता है। अब यहां आगे पढ़ेंगे, गाथा अभी पढ़नी बाकी है। मिथ्यात्व असंयम कषाय और योगों के निमित्त से कर्म उत्पन्न होते हैं, इसको बंध हेतु कहा ना, मिथ्यात्व असंयम कषाय और योग, कहीं कहीं 5 में भेद करते तो प्रमाद को अलग बताते हैं परंतु बात एक ही है, यहाँ पर उसी को में कषाय में गर्भित है, तो उनके निमित्त से कर्म उत्पन्न होते हैं और कर्मों के निमित्त से जाति जरा मरण और वेदना उत्पन्न होते हैं। यानी कर्मों के बारे में उसके कर्म के बंध के हेतु क्या है, उसका फल क्या मिलता है, वो क्या है, उसका नाम क्या है, अपाय विचय। तो यानी कर्मों के निमित्त से क्या क्या होते हैं, तो कहते जाति जरा मरण वेदना ऐसा चिंतन करना और उनसे अपाय का चिंतन करना अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। एक्चुअली कर्मों का जो फल है उसको विपाक विषय कहेंगे और उससे उसका उपाय कैसे करेंगे हम उससे रहित होने का, तो उसको अपाय विषय कहेंगे। उस विषय में गाथाएं 39 नंबर राग दोष कसाया सवादि क्रिया सुवट्टमाणानम इह परलोगामाए जाए जो वज्ज परिवज्जी। पाप का त्याग करने वाला साधु राग द्वेष कषाय और आश्रव आदि क्रियाओं में विद्यमान जीवों के इहलोक और परलोक से अपाय का चिंतन करे। 40 नंबर। कल्याण पावे जे उआए चिचिना दिजनमय मुच्वेच विचिना दिवा अवाए जीवाणम जे सुहा सुहा। अथवा जिनमत को प्राप्त कर कल्याण करने वाले जो उपाय है उनका चिंतन करता है, अथवा जीवों के जो शुभाशुभ भाव होते हैं उनसे अपाय का चिंतन करता है, यानी वो शुभाशुभ भावों के कारण जीवों का जो अपाय होता है ना उसके जो तकलीफ होती है उसका चिंतन दोनों ओर से है, उपाय भी और अपाय भी। उसका अपाय हमने कहते हैं यह अपायकारक है, अपायकारक है ना क्या हानिकारक है, हानि शुभाशुभ भावों से क्या हानि होती है। देखो ऊपर भी देखो 39 में क्या लिखा है, पाप का त्याग करने वाले साधु, साधु स्वयं है पाप का त्याग करने वाले, वो तो सम्यक दृष्टि तो है ही, परंतु किसके बारे में चिंतन चल रहा है, अन्य जो लोग हैं, कैसे वो राग द्वेष कषाय और आश्रय आदि क्रियाओं में विद्यमान जो जीव है वो इहलोक और परलोक से अपाय का उनके क्या क्या हानि होती है उस संबंधी वो चिंतन करते हैं। हाँ, यानी अपाय के दो अर्थ हुए, उपाय भी और हानि भी। यहाँ पर भी 40 नंबर में भी बताया कि अथवा कहकर जिनमत को प्राप्त कर कल्याण करने वाले जो उपाय है उनका चिंतन करना उसको भी अपाय विचय कहेंगे, और अथवा जीवों के जो शुभाशुभ भाव होते हैं उनसे अपाय का चिंतन करते हैं। अपाय होने नहीं हानि, यानी अपाय के दो अर्थ करके दोनों ओर से उसका कथन कर रहे हैं। अपाय का अर्थ उपाय भी है और अपाय का अर्थ हानि भी है, क्योंकि उस संबंधी उस चिंतन चलता है, वो ध्यान किसका चल रहा है, उनका चिंतन किसके चल रहा है, ये बात चल रही है। अब कहते प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश के भेद से चार प्रकार के शुभाशुभ कर्मों के विपाक का चिंतन करना। क्या कहा, ये बंध तो चार प्रकार से होते ही होते हैं, पर उसका जो फल मिलना कहो या उसका जो उदय होना जिसको हम कहेंगे, कर्म के उदय में भी प्रकृति का उदय है, उस स्थिति का जो एक समय के जो निषेक उसका उदय है, किस अनुभाग रूप से उसका उदय है और कितने प्रदेशों का उदय है, उसके भी चार भेद हो गए, तो उस चार प्रकार के शुभाशुभ कर्मों के विपाक का चिंतन करना विपाक विचय नाम का तीसरा धर्म ध्यान है। अब उसके विषय में गाथा वो 41 नंबर के। पयरिठि दिप्पदेशा अनुभाग भिन्नम सुहासुह विहत्तम जोगाणुभाग जनियम कम्म विभागम विचिन्ते जो। वो जनियम चाहिए, जनीय हुआ है, जनियम आपके उसमें जनियम है, हाँ जनियम होना चाहिए। देखो अभी उसका अर्थ देखते हैं नीचे, जो 41 पढ़ा ना अभी हमने, जो प्रकृति स्थिति प्रदेश और अनुभाग, प्रकृति यानी जो मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियां जहां किसका कहां कितना उदय है उसको कहेंगे प्रकृति उदय। स्थिति यानी अपनी स्थिति पूरी होने पर जो उदय रूप निषेक होता है। प्रदेश कितने मात्रा में परमाणु फिरते हैं और किस अनुभाग से उसका उदय होता है, इन चार भागों में विभक्त है, जो शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। तथा विपाक की बात है ना, शुभ भी है और अशुभ भी, जो योग और अनुभाग अर्थात कषाय से उत्पन्न हुआ है, योग और कषाय से उत्पन्न हुआ, कषाय कोई अनुभाग का, जो योग और अनुभाग से नहीं योग और कषाय से उत्पन्न हुआ है ऐसे कर्म के, क्योंकि प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग चारों लिए, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग से होता है, स्थिति अनुभाग तो कर्म कषाय से होता है, वो क्यों उत्पन्न हुआ था तो कि इनके कारण, अभी वो उदय में आ रहा है, उसका फल मिल रहा है, ऐसे कर्म के विपाक का चिंतन करें। यानी जो हम कहते हैं ये कर्मकांड क्यों जानना, अरे तो ये चिंतन का विषय है, उसमें जो मन स्थिर हो जाता है, अन्य दुनियादारी की हम चिंता नहीं करते, वहां पर राग द्वेष रहित होकर। 42 नंबर। एगानेग भवगयम् जीवाणम् पुण्य पावकम् फलम् उदोदीरण कंकम बंधम मुखम च विचिनादि। जीवों को जो एक और अनेक भव में, एकानेक लिखा ना, पुण्य और पाप कर्म का फल प्राप्त होता है। क्या कहते हैं, ये कर्म का फल बांधा है कभी अभी या पहले कभी, और उसका फल अनेक भवों में भी मिलता है या एक भव में मिलता है, उसका तथा यानी कर्म के फल का तथा उदय उदीर्णा संक्रम बंध और मोक्ष का चिंतन करता है, यानी कर्म की जो अवस्थाएं हैं उन संबंधी चिंतन चलता है। ये कहते ना, ये आलंबन जो है, ध्यान का जो आलंबन बताया है वो तो पूरा आगम है, ये तो ये कर्म के जो अभी हम उसके संबंध में जानेंगे नहीं है तो चिंतन काहे का करेगा वो, आत्मा आत्मा कहने से क्या होगा वहां पर। अभी यहाँ तो ऑलरेडी जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है उसके लिए ये आलंबन रूप ये बातें बताई। तीन लोकों के संस्थान प्रमाण और आयु आदि का चिंतन करना संस्थान विषय नाम का चौथा धर्म ध्यान है, इस विषय में गाथा। यानी तो भूगोल जानने से आत्मा का क्या कल्याण होगा, ऐसा लोग पूछते हैं हमको। जब हमारी भूगोल की शिविर हुई थी तो लोगों ने आक्षेप लिया था, तो कहते ये भी उस संबंधी जो चिंतन चलेगा, ज्ञान ही नहीं होगा तो चिंतन काहे का करेगा। तो संस्थान विषय धर्म ध्यान बताया है, और जो 24 ठाणा वगैरह होते हैं ना उसमें कौन सा ध्यान कौन से गुण स्थान में होता है, तो ये तो संस्थान विषय तो मुनियों के लिए बताया वहां पर खास करके। हाँ, अभी 43 नंबर का 43। हाँ, तीन गाथाएं पढ़ेंगे फिर तीन का एक साथ अर्थ देखेंगे। हाँ, जिन देसियाई लखन संठानासन विहान माणाई उपादि भंगादि पज्जयाजे यदौहाणम पंचस्थिकाय मह्यम लोकमणाई निहणम जिन खादम नामादि भेय विहियम तिविहम हो लोग भागादिम खिदिवलय दीवसाय रणय रविमान भवनादि संठानम ओमादि परिठानम नियम लोगठिदि विहानम। देखो, जिन देव के द्वारा कहे गए छह द्रव्यों के लक्षण, यानी छह द्रव्यों के नाम हम पढ़ेंगे, उनके लक्षण, जीव किसको कहना, पुद्गल किसको कहना, वो लक्षण, संस्थान, ये परसों पूछे थे ना, संस्थान यानी क्षेत्र, जीव कितना बड़ा है, असंख्यात प्रदेश ही वो उसके संस्थान हो गए, रहने का स्थान, उनके भेद प्रमाण, ये सब हमने देखा जीवकांड में सम्यक प्रमार्गणा का विषय है पूरा, तथा उनकी उत्पाद स्थिति और व्यय आदि रूप पर्यायों का, ये सभी द्रव्यों की बात है। पांच अस्थिकायमय अनादि निधन नामादि अनेक भेद रूप और अधोलोक आदि भाग रूप से तीन प्रकार के लोक का, तथा पृथ्वी वलय द्वीप सागर नगर विमान भवन आदि के संस्थान का, जिसको हम कहें जो आठ पृथ्वियां है और फिर वो वात वलयों से नीचे है युक्त है, द्वीप सागर जो मध्य लोक में है, नगर विमान आदि जो संस्थान जो आगम में जिसका वर्णन है, एवं आकाश में प्रतिष्ठान, नियत और लोकस्थिति आदि भेद का चिंतन करें। यानी ये जो हम जो देखते हैं ना त्रिलोक का वर्णन, त्रिलोक सार, वो पूरा सब इसमें, वही वो संस्थान विषय धर्म ध्यान है। अभी 46, 47, 48 वो जो गलखमणाई निहण मत्थरम तरी दादो जीव मरुविम कारिम बोइंच सयस कम्मस तस्य सकम्म जनियम जम्माय जलम कसाय पायालम वसन सयसावमीनम मोहावत्तम महाभीमम नानमय कन्नहारम वरचारित्तमय महापोयम संसार सागर मनो रपारम सुहम विचिन्तेज्जो। इसका अर्थ देखते हैं। जीव उपयोग लक्षण वाला है, अनादि निधन है, शरीर से भिन्न है। अभी जीव के बदले मैं ऐसा लखो, मैं उपयोग लक्षण वाला हूँ। हम कैसे सोचते हैं मैं कौन हूँ, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने भी आधार बता दिया ना, ये तू कौन है, पूरी आइडेंटिटी। ये जो कभी कभी पेपर पढ़ते हैं तो उसमें वो आता नहीं है सेल्फी 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 के, उसमें कितने अपनी जान गंवा देते। यानी सेल्फ को जाना ही नहीं तो सेल्फी क्या निकालेंगे। सेल्फ किसको समझ रहे हैं, शरीर को, और वो शरीर मैं हूँ ऐसा मोहित होकर और फिर उसके और फोटो खींचने में चले और अपनी जान तक गंवा देते। अब यहाँ मैं कौन ये सच में जाना जाए तो उसकी फोटो अपने पर्याय में आनी चाहिए, वो बाहर के फोटो में उसके फोटो नहीं आने वाली। मालूम ही नहीं ना सेल्फ कौन है। देखो क्या है, जीव यानी मैं स्वयं उपयोग लक्षण वाला है, अनादि निधन है, शरीर से भिन्न है, अरूपी है, तथा अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता है। ऐसे उस जीव के कर्म से उत्पन्न हुआ जन्म मरण आदि यही जल है। देखो क्या कहना है, आप कहेंगे यहाँ कर्मों का कर्ता भोक्ता कह दिया। हाँ, ये विशिष्ट नय से कहते हैं, व्यवहार नय से कहेंगे कर्मों का कर्ता है भोक्ता, और यही व्यवहार नय से, क्योंकि दो भिन्न द्रव्य ना, तो कर्म से उत्पन्न हुआ जो ऐसा जन्म मरण आदि उसी को जल कहा, और कषाय वही उसका पाताल है, सैकड़ों व्यसन रूपी छोटे मत्स्य है, मोह रूपी आवर्त है। आवर्त समझते हैं, भौरा जो होता है ना समुद्र में, बड़े बड़े भौरे होते, पूरे बड़े जहाज भी उसके चपेट में आ जाए तो नीचे पहुंच जाते हैं। गोल वमल कहवाए थे, वमल 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 मोह रूपी आवर्त छे, आवर्त है नहीं वो चक्कर खाना, आवर्त है ना, परावर्तन कैसे कहा, हाँ चक्र, इसको भौरा कहते मराठी में, और अत्यंत भयंकर है, ज्ञान रूपी कर्णधार है, और उत्तम उत्कृष्ट चारित्र में महापोत है। महापोत यानी वो नौका होनी चाहिए शायद, और ज्ञान रूपी कर्णधार उसको चलाएगा, इसमें से निकल कर चला जाएगा। ऐसे इस अशुभ और अनादि अनंत संसार का चिंतन करे, यानी इसमें से पार होना है, ये कहना चाहते हैं। 49 किं बहु सोऽसौ वंचीय जीवादिपयत्थ विथरो वेयम् सौवर्णय समूहमयम् झायज्जो समय सभावम्। बहुत कहने से क्या लाभ, यह जितना जीवादि पदार्थों का विस्तार कहा है उस सबसे युक्त और सर्व नए समूह में समय सद्भाव का ध्यान करे। समय ने जिनागम जो है जिसको समय कहते हैं, आगम को भी समय कहते हैं, यानी अपने आगम का ध्यान करे। जो हम ये जो हमारा जो स्वाध्याय चलता है, पढ़ते हैं हम, इसके द्वारा ज्ञान में ये बातें और हमारा उसमें उपयोग केंद्रित है, समझ में आती ना बात, तो यही पूरा जो है। इसीलिए स्वाध्याय बारम्बार क्यों करते हैं कि तो जीवादि पदार्थों का विस्तार अगर हम नहीं जानेंगे तो ध्यान के नाम पर क्या चलेगा वहां पर। निर्णय हुए बिना ध्यान नहीं होता। देखो मिथ्या दृष्टि है पर्याय की बात आपने बताई, तो स्वाध्याय का कुछ लाभ होगा कि नहीं आपका प्रश्न है। स्वाध्याय से ही ज्ञान निर्णय तक पहुंचेंगे। और स्वभाव की बारंबार ये नौ पदार्थ कहो, स्वभाव भाव कहो, ये सभी का हमारे अच्छी तरह से निर्णय हो जावे, ये तो सहज है। ये तो यहाँ तक आए तो और कुछ नहीं बढ़ता, यहाँ तक आए है उसको कुछ कठिन नहीं है। राग बढ़ता है, देखो राग बढ़ता है कम होता है जो कुछ है उसको उसको उससे मैं जुदा हूँ पहले ये नक्की करना है। राग कितना होता है उसकी डिग्री मत मापो।
नहीं नहीं, हम तो ऐसा कहेंगे फॉर द बिगिनिंग स्टेज में, शुरुआत में हमारा जो राग पाप राग जो हो रहा था उससे हटकर शुभ राग में आए ना, ख्याल में है? यहाँ तक तो हमने नक्की किया कि हम पाप से हटकर पुण्य में आए, लेकिन पुण्य में आने के बाद वह भी रखने लायक नहीं है, उससे मैं जुदा हूँ, ये फिर नक्की करना है। और ये सारी बातें नक्की स्वाध्याय करने से ही होगी। यानी जिनागम जो है, जिनेंद्र भगवान ने बताए हुए जो शास्त्र है उसके माध्यम से ही होगा। और जिनागम बोल के और नन्य कोई और कुछ चलाते हैं उससे तो और हम खतरे में जाएंगे।
और शुरुआत में स्वाध्याय संबंधी राग होगा, जिनेंद्र भगवान की भक्ति होगी, परंतु वो सच्चे देव गुरु शास्त्र के आलम्बन होगा। वो राग है भले, परंतु वो राग से भिन्नता का अभ्यास चलना चाहिए। ये राग छूटा और वो राग में अटक गए उसकी बात नहीं। यहाँ पर राग मात्र से मैं भिन्न हूँ ये हमने आगम से ही जाना है ना। यहाँ पर फिर भी इन पदार्थों को जानने का निषेध नहीं, जानने के लिए तो पूरा लोक है, और वो जानेंगे पूरे आगम को। यहाँ ध्यान का विषय कहा है, समझ में आती है बात? परंतु यहाँ ध्यान का विषय तो बता दिया, परंतु उसमें से मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ ये सिद्ध जिसने यानी जान लिया है, प्रतीति कर ली है, अभी उसका ज्ञान किसी एक पर केंद्रित होकर उसी को जान रहा है, उसी को तो ध्यान कहा है यहाँ पर। तो कहते कि अधिक क्या कहना कि जितना जीवादि पदार्थों का विस्तार का हमने जो अभी आगम में सो सारे जीवादि पदार्थों का विस्तार देखा, अभी भी अभी जो हमने जीव कांड देखा था ना, अभी परसों इसी में बात आई थी दुबला में कि ये सब जीव की अवस्थाएं वो जीव कांड का विषय है, इसका अध्यात्म का विषय, इसमें बात आई थी इसी में पुस्तक में आई थी, उसको अध्यात्म कहा था। जीव की अवस्थाएं जो है अन्य चीजों के कर्मों की अवस्थाएं वो तो ध्यान के विषय है यहाँ पर, क्योंकि सम्यदर्शन होने के पहले वो स्वभाव की बात तो आती ही है, परंतु अभी स्वभाव जान लिया, सम्यदर्शन भी कर लिया, उसमें अधिक स्थिरता नहीं हो रही, तब क्या होगा? तो इन विषयों के बारे में चिंतन चलेगा, ये कह रहे हैं। ये 49 हो गया, अभी 50 नंबर। जानो वर में विमुनि निच्चमणिच्छादि चिंतना परमो होइ स्वभाविय चित्तो धम्मच्छाने जिहव पुण्यम। ऐसा ध्यान करके उसके अंत में मुनि निरंतर अनित्यादि भावनाओं के चिंतन में तत्पर होता है। क्या कहा? ये जो अलग अलग ध्यान की बातें बताई ना, कौन कौन सी बताई? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय आदि, जितना भी जो पदार्थों का समूह विस्तार है आगम में, वो सब उनके ध्यान का विषय बताया। तो कहते ऐसे ध्यान करके उसके अंत में क्या है? निरंतर अनित्यादि भावनाओं के चिंतन, जो 12 अनुप्रेक्षा कही है उनके चिंतन में तत्पर होते हैं, जिससे वह पहले के समान धर्मीय ध्यान में सुभावित चित्त होता है। सुभावित चित्त, वो अच्छी प्रकार के भावना करने वाले जो है इस तरह से होते हैं। अब आना 74 पेज पर। यदि समस्त समय सद्भाव यानी पूरा आगम, धर्म ध्यान का ही विषय है तो शुक्ल ध्यान का कोई विशेष शेष नहीं रहता। समझ में आई बात? ये शुक्ल ध्यान में भी तो ये बताए, नौ पदार्थों को बताया था वहां पर भी विषय करके, या तो सिद्ध भगवान या नौ पदार्थ बताए थे वहां पर भी। तो कहते समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि दोनों ही ध्यानों में विषय की अपेक्षा कोई भेद नहीं है। शंका, यदि ऐसा है तो दोनों ही ध्यानों में एकत्व अर्थात अभेद अभद हुआ अभेद प्राप्त होता है, क्योंकि यानी दोनों एक ही हो गए, उसमें भिन्नता क्या है, दोनों को विषय सेम है। दंश मशक, सिंह, भेड़िया, व्याघ्र, श्वापद और भल्ल, भल्ल ने रीच अश्वल जिसको कहेंगे, द्वारा भक्षण किया गया भी, वसूला द्वारा छीला गया भी, वो छीलने के कोई हथियार है वसूला, करो तो द्वारा फाड़ा गया भी, दावानल के शिखा मुख द्वारा ग्रसा गया भी, शीतवात और आतप द्वारा बाधा गया भी, और सैकड़ों करोड़ अप्सराओं द्वारा ललित किया गया भी, जो जिस अवस्था में ध्येय से चलायमान नहीं होता वह जीव की अवस्था ध्यान कहलाती है। अपने ध्येय से चलायमान नहीं होता, इस प्रकार का यह स्थिर भाव दोनों ध्यानों में समान है, अन्यथा ध्यान रूप परिणाम की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब यही रुकेंगे हम, समाधान। अच्छा अच्छा, ये शंका पूछे, अन्यथा ध्यान रूप परिणाम की उत्पत्ति नहीं हो सकती, समाधान। यही शंका के समाधान में कहते कि यह बात सत्य है, इन दोनों प्रकार के स्वरूपों की अपेक्षा दोनों ही ध्यानों में कोई भेद नहीं है, किंतु इतनी विशेषता है कि धर्म ध्यान एक वस्तु में स्तोक काल तक रहता है, अल्प काल तक रहता है, क्योंकि कषाय सहित परिणाम का गर्भगृह के भीतर स्थित दीपक के समान चिरकाल तक अवस्थान नहीं बन सकता है, यानी वो एक ही विषय पर अधिक काल तक स्थिर नहीं हो सकते, ये कहना चाहते हैं। उन्होंने तो दसवें तक स्वीकार किया है, ये पहले, हाँ मुझे पता है, चार से सात तक, सात तक, आठवें से शुक्ल ध्यान होता है, परंतु यहाँ ऐसा स्वीकार किया। हाँ ठीक है ना, जो अलग अपेक्षा आती है ना, तो यहाँ दसवें तक उन्होंने धर्म ध्यान बताया है, और फिर ग्यारहवें में वो पृथक्त्व और बारहवें में एकत्व, इस तरह से लिया है, अलग अपेक्षा से उसका कथन है यहाँ पर, वो पहले पढ़ा था हमने ये। देखो यही रुकते अभी, चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सना देत हो लक्ष्मी।